ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 8। तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाह्य भाव। तत् अतः ते आपकी अनुकंपाम दया की सुसमीक्षमाण आशा रखते हुए भुंजान सहन करते हुए एव निश्चय ही आत्मकृतम अपने से किया गया विपाकम कर्मफल अतः हृदय वाक वाणी वपुर भी तथा शरीर से विदधन अर्पित करते हुए नमः नमस्कार ते आपको जीवेत जीवित रहता है यह जो मुक्ति पदे मुक्ति पद के लिए सह वह दाय भाक असली उत्तराधिकारी। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहैतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जा सकता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसीलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वह मन वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का पुत्र बन जाता है, जैसा कि दाय भाग शब्दों से सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया एक उपचार है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहैतुकी कृपा प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। ये प्रसिद्ध श्लोक ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया। ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी जो मोहित हुए, उसे केवल मोहन नहीं कह रहे बल्कि विमोहन, विशेष रूप से वो मोहित हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे महानुभाव केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति के द्वारा मोहित हो सकते, और हम इस भौतिक संसार में जब माया के द्वारा मोहित होते हैं तो उसे विमोहन नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इस भौतिक संसार में भी ये फलाना एक्स वाई जेड जो जीव है उसकी विमोहन लीला चल रही है। तो ब्रह्मा जी इस सुंदर श्लोक में एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत हम साधकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसे जाने बिना, जिसका साक्षात्कार किए बिना हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते, जो कि हमारा परम उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण की अहैतुकी सेवा भगवान श्री कृष्ण के निज धाम में। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सब को एक विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, हम सबको कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के ही संदेश को, भगवान के मनोभाव को समझते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सब जीवों को एक विशेष अधिकार ये प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश होने के नाते ये हमारा अधिकार है कि हम उनके सानिध्य में रहें। यहां पर श्रीधर स्वामी की टीका कहते हुए तात्पर्य में कहा गया है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, और एक पुत्र का अधिकार होता है कि वो अपने पिता के साथ रहे। तो पिता पूछे कि ठीक है, तुम अपने इस अधिकार को कैसे सिद्ध करोगे? क्या केवल तुम इस परिवार में पैदा हुए हो? क्या यही गुण है? क्या यही तुम्हारी योग्यता है? हां, यहां पर श्रीधर स्वामी ये भी लिखते हैं कि केवल यदि वो पुत्र जीवित रहे तो उससे पूरी जायदाद मिल जाती है। क्या रहना है उसे? केवल जीवित रहना है उस परिवार में। तो जीवित रहने का अर्थ क्या है? श्रीधर स्वामी लिखते हैं, टू बी अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण भावना मृत में जब जीवित रहेंगे तो हम अधिकारी बन जाते हैं, दाह्य भाक कहा गया है। किसके अधिकारी बन जाते हैं? जीवेत यो मुक्ति, लिबरेशन, मुक्ति। और यहां पर मुक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यही श्लोक जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना, जब वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन चुके थे, परिवर्तित हो चुके थे, तो उन्होंने ये मुक्ति पदे को भक्ति पदे करना चाहा कि ये मुक्ति पदे क्या है। एक भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, जो कि ऐसे गुण, इस श्लोक में जो गुण बताए गए हैं, ऐसे गुणों को धारण करता है, वो तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति तो भक्ति के अधीन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर समझाया कि नहीं, यहां पर मुक्ति का अर्थ भक्ति ही है। तो जीवेत यो मुक्ति या भक्ति पदे सदाह्य भाग, ये अधिकार बन जाता है उस साधक का जो कि जीवित है कृष्ण भावनामृत में। वन हु इज अलाइव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तब अगला प्रश्न ये है, हाउ टू रिमेन अलाइव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में जीवित कैसे रहें? या ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि कृष्ण भावनामृत में भी कोई मृत हो सकता है? कैन एनीवन डाई इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सहनशीलता, जो कि आज के हमारे क्लास का शीर्षक है, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, ये एक वैष्णव के गुणों में एक शिरोमणि गुण है। सहिष्णुता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा, टॉलरेंस इज द हॉलमार्क ऑफ अ वैष्णव। अब जब हम सहनशीलता की बात करते हैं तो एक तरफ है किसी का हृदय बहुत कठोर होता है, हार्ड हार्टेडनेस जिसे कहते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि जिसका हृदय बहुत कठोर है वो बहुत सहनशील है, और जिसका हृदय बहुत नरम या मृदु है वो सहनशील नहीं है। बड़े बड़े हमारे जो परंपरा के आचार्य हुए हैं, जो इतने सहनशील हुए, परंतु उसके साथ साथ उनका हृदय मक्खन की समान पिघला हुआ नर्म। तो आज हम अपने पांडव निर्जल एकादशी कि सुबह के भागवतम क्लास में सहनशीलता का पालन हमें क्यों करना चाहिए, इसके 8 कारण। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टॉपिक आज ही के दिन क्यों चुना, आज के दिन नहीं चुनते तो कौन से दिन चुनते। कि निर्जल एकादशी पालन करने और इस दिन जो साल में एक दिन हमारी सहनशीलता टेस्ट की जाती है, हर रूप से, केवल शारीरिक रूप से नहीं, हर रूप से टेस्ट की जाती है, तो हम कितने खरे उतरते हैं। भगवान भी चेक करना चाहते हैं, देखते हैं कितना दम है ये मेरे साधक में, देखते हैं पांडव निर्जल एकादशी के दिन कितने पानी में है ये। मुहावरा है ना, देखते हैं कितने पानी में है। तो पानी में रहते हुए ये पानी पीता है क्या, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो अधिकारी बन जाता है जो धैर्यपूर्वक पेशेंटली जो सहन करता है अपने पिछले पाप कर्मों को, और सहन करते समय करता क्या है, रिद्वाग वपुर भीर, कि अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता रहता है। तो ये है आज जो हम लोग पांडव निर्जला कर रहे हैं, ये हमारे लिए पर्पस बताया गया इस श्लोक के द्वारा, कि पर्पस क्या है इसके करने का, कि हम आज खाना तो दूर, जल की एक बूंद भी नहीं लेंगे, क्यों, ताकि वो पूरा समय हम इस्तेमाल करें रिद्वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, किसके लिए, भगवान श्री मदन गोपाल जी का गुणगान करें अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से। ये पर्पज है, पर्पज ये नहीं कि मैंने कोई एकादशी तोड़ी हो तो भाई वो एकादशी जो मेरे से टूट गई हो, कई बार ये बताया जाता है कोई एकादशी टूट जाए तो इसे कर लो तो फिर बच जाओगे। हाँ ठीक है, वो एक कारण है, लेकिन वो बहुत ये करने का। तो 8 कारण क्या हैं आज की एकादशी या सहनशीलता पालन करने के 8 कारण। सबसे पहला कारण कि इस भौतिक संसार में रहते हुए सहनशीलता के अलावा कोई चारा नहीं है, नो अदर ऑप्शन, कोई चारा नहीं है सहनशीलता के अलावा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता के शुरुआत में ही कह दिया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, हे भारत, तुम ये मत समझो कि तुम इतना जो रो रहे हो, बिलख रहे हो मेरे सामने, तो मुझे तुम पर तरस आ जाएगा और ये युद्ध मैं लड़ूंगा, तुम बैठ जाओगे पीछे आराम से। भगवान कह रहे हैं इस भौतिक संसार की रचना जो मैंने की है वो फुल एंड फाइनल है, दुखालयम अशाश्वतम, वो चेंज नहीं होने वाला है। वो क्यों चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने उसकी रचना की, क्योंकि मैं चेंज नहीं होता और मैंने जो रचना करता हूं वो भी मैं चेंज नहीं करता। तो अर्जुन पूछे तो फिर मैं क्या करूं, ताम स्थितिक्षस्व, टॉलरेट। ये जो सामने तुम्हारे सगे संबंधी खड़े हैं, ये तुम्हारे सगे संबंधी बने रहेंगे। इन्हें तुम शत्रु मानो या सगे संबंधी मानो, लड़ना तो इन्हीं के साथ है। ये सामने वाले मैं चेंज करके नहीं खड़ा करूंगा तुम्हारे। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस श्लोक के द्वारा भगवान ये सिद्ध किया कि इस भौतिक संसार में सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, चाहे आप कोई भी हो, यहां तक कि देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, यदि वहां तक भी कोई पहुंच जाए तो भी भगवान कहते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन, कि वो सब इसी की चपेट में है, दुखालयम अशाश्वतम, द्वंद्वों में फंसे हुए। तो करना क्या है फिर? सहन करना है। लेकिन इस भौतिक संसार में देखते हैं कि हम आए किस प्रयास में, हम आए इस प्रयास में इस भौतिक संसार में कि हम वो पद ले लें भगवान का, अर्थात हम इस सहनशीलता के परे चले जाएं। ये हमारा प्रयोजन था। और इस भौतिक संसार में भी जो भी ये आधुनिक प्रगति हम कर लिए हैं, इस आधुनिक प्रगति के द्वारा हम क्या बता रहे हैं भगवान को? मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सही, आप गलत। जैसे श्रील प्रभुपाद वो छोटी सी कथा सुनाया करते थे कि एक मरणशील व्यक्ति मरने वाला है मृतशैया पर, उसने सोचा कि यमराज जी को मैं धोखा दूंगा। तो यमराज जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो गंदगी की जगह पर नहीं आते होंगे, तो अपने पूरे शरीर में उसने मल लेप लिया। तो यमराज जी, उन्होंने देखा, और इसका प्रयोजन क्या था कि यमराज जी पहचान ही नहीं पाएंगे मुझे, और पहचान भी लेंगे तो दुर्गंध के वजह से पास नहीं आएंगे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि जे कृष्ण भजे सो बड़ो चतुर, जो कृष्ण को भजते हैं बहुत चतुर होते हैं। तो यमराज जी भी उसके बाप के बाप, वो एक सुअर को लेके आए, और ऐसे सुअर को लेके आए जिसने पांडव निर्जला की थी। तो बहुत द्वादशी के दिन लेके आए उसको, और फिर कह दिया चलो महाप्रसाद है गोविंद। तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। जैसे कि बहुत से भक्त, हम पहले जब वहां राधा गोपीनाथ मंदिर में, बहुत से हम लोग निर्जला शुरू कर दिए, करीब 3-4 साल हर एकादशी निर्जला करते थे। क्यों? क्योंकि वैसे ही कुछ खाना पीना अच्छा रहता ही नहीं है। वो जो बनता था वो भगर और साबूदाना वैसे ही पसंद नहीं आता था। तो यार कोई ऑप्शन तो है नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो किचन में जाके बोल भी नहीं सकते कि एकादशी के दिन मेरे अनुसार कोई मेनू बनाओ। तो फिर ठीक है, साबूदाना भगर पसंद नहीं है, इससे अच्छा निर्जला करते। तो कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे कर्म के जो हमारे नियम हैं, वो भी हमारे शास्त्र में बताए गए हैं कि ये कर्म के हमारे नियम ऐसे हैं कि कोई कितना भी प्रयास करे इसे भागने का, ये न के न प्रकारेण कोई ज्योतिषी के पास जा रहा है, कोई वास्तु विशेषज्ञ के पास जा रहा है कि देखो इसके पालन करने से क्या सुख समृद्धि आ जाएगी, कि जहां पर किचन है वहां पर यदि टॉयलेट बाथरूम खोल दूं तो क्या मेरा चूल्हा जलता रहेगा। ये वैसे ही है जैसे कि हाँ कोई अगर यहां वहां कुछ चेंजेस वगैरह करे तो उसमें एक ही होगा कि जैसे दो कैंसर के पेशेंट हैं, एक जनरल वार्ड में सफर कर रहा है, एक एसी वार्ड में सफर कर रहा है, हुआ दोनों कैंसर ये दोनों को, तो ये नहीं कि एसी में है उसके वजह से वो बहुत सुखी है, दोनों को हुआ है कैंसर ही। तो अगर कोई कितना भी प्रयास करे लेकिन इस भौतिक संसार के जो क्लेश हैं दुख हैं वो तो उसे प्राप्त होने ही वाले। वैदिक शास्त्रों का एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, यथा धेनु सहस्त्रेशु वत्स गच्छति मातरम। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे धेनु एक गाय होती है वो अपना बछड़ा पहचान लेती है करोड़ों बछड़ों में, करोड़ों बछड़े एक साथ जुट हैं, तो जो गाय होती है वो अपने बछड़े को ठीक पहचान लेती है करोड़ों बछड़ों में। उसी प्रकार से कर्म जो है वो अपने कैंडिडेट को पहचान लेता है, चाहे वो कोई भी योनि में गया हो। अगर जीव सोचे कि अरे कितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख उसके अंदर कितनी सारी योनियां हैं, तो मैं कौन सी योनि में कब कहां जाऊंगा, मेरे कर्म फल को क्या पता लगेगा। नहीं, वो वैसे ही यमराज जी जैसे सुअर लेके आए और ढूंढ के पकड़ के उसे उसका कर्म फल देते हैं। जैसे मैं जब एयरफोर्स में था तो एक घटना बहुत उस समय प्रसिद्ध हुई थी वायुसेना में। वहां का नियम ऐसा कि यदि आप ड्यूटी पे अपने प्राण त्याग दो तो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत रकम मिलती है, लाखों रकम मिलती है आपको। तो प्रश्न यह है कि ड्यूटी पर इसकी परिभाषा क्या है। 24 घंटा आप ड्यूटी पर ही हैं, चाहे आप छुट्टी पर भी हो, छुट्टी पर भी आप की मृत्यु हो गई तो भी आपको सब कुछ प्राप्त होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक ये एयरफोर्स का एक पर्सनल ये पंजाब से था, तो ये छुट्टी गया हुआ था अपने गांव पंजाब में और ये छुट्टी से लौट रहा था, तो इसकी ट्रेन की कुछ बोगीज का एक्सीडेंट हुआ, पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ बोगीज डीरेल हो गए वापसी में, पंजाब से दिल्ली की ओर ही आ रहा था, तो कुछ बोगीज डीरेल हुए, कुछ पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट उसमें, और वो ऐसे जगह पर वो एक्सीडेंट हुआ कि पूरा वो नो मैंस लैंड बोलते हैं, जंगल एरिया था वो। तो अब इसने क्या किया, ये बचा हुआ तो इसने युक्ति निकाली एक, तो इसने किया क्या कि एक ऐसे मृत पैसेंजर को लिया जो थोड़ा कद में उसके तरह था और उसका चेहरा पूरा डिफेस कर दिया और अपना एयरफोर्स का आइडेंटिटी कार्ड निकाल के उसके जेब में डाल दिया। तो अब जब पुलिस जब भी आएगी देखेगी अरे ये तो एयरफोर्स का आदमी है, मर गया एक्सीडेंट में, तो इतना सारा पैसा मुझे जीते जी मिल जाएगा। तो ये उसकी योजना, तो उसने किया ऐसा और फिर वो ये न कहना जंगल में से यहां वहां से करके वापस लौट गया अपने गांव। और अपने परिवार अचानक, अरे छुट्टी पे, छुट्टी तो पूरी हो गई थी, ड्यूटी पे गए थे, अचानक वापस कैसे आ गए? तो सारी स्टोरी सुना दी, बोल दिया कि अभी कुछ समय में एयरफोर्स का टेलीग्राम आएगा। क्या टेलीग्राम आएगा? मैं एक्सीडेंट में मर गया, जाके मेरी तथाकथित डेड बॉडी कलेक्ट करना, और फिर उसके साथ जितने सारे पैसे मिलेंगे। तो वो भी उसके परिवार वाले थे, तो मान गए। तो जैसे उसका प्लान था वैसे सारा हो रहा था। वो रेलवे पुलिस आया, वो सब चेक किया, सबके बॉडीज आइडेंटिटी चेक किया, पता लगा ये आई कार्ड इसका, तो तुरंत एयरफोर्स को हैंडओवर किया। एयरफोर्स ने इसके घर में टेलीग्राम भेजा कि भाई हमें बहुत खेद है कि आपका ये परिवार का सदस्य एक्सीडेंट में मारा गया। वो टेलीग्राम भी उसी ने रिसीव किया घर पे। फिर उसने अपने परिवार वालों को भेजा, थोड़ा रोना धोना नाटक किया उन्होंने, और जो चाहिए था पैसे वैसे लेके वो आ गए। अब ये बस इतने सारे पैसे लेकर गांव में इसने बिजनेस बिजनेस खोल दिया, और एकदम मजा मस्ती का जीवन चल रहा है। इसका पेंशन भी है, हर महीना पेंशन मिल रही, इतने पैसे मिल गए, कोई ड्यूटी व्यूटी करनी नहीं है। 8 साल बाद वहां पर, वो जब पंजाब में वो समय था ना इनका, आतंकवादियों का बहुत ज्यादा, तो इसके गांव में रेड पड़ी, पुलिस की रेड पड़ी 8 साल बाद। 8 साल पहले इसने क्या कुछ किया था सब कुछ भूल चुका था। तो पुलिस स्टेशन में पूरे गांव को आने के लिए कहा, कोई आतंकवादी छिपे हुए थे उस गांव में, तो पूरे गांव को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, और एक-एक कर सब की छानबीन की गई। तो ये बोल दिया इसने, भाई मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो यहां पर मेरा छोटा सा धंधा है, मैं अपने घर में रहता हूं, क्या नाम है तुम्हारा, नाम वगैरह ये सब लिख लिया। तो इस गांव का, इस नाम का ये व्यक्ति उनके रिकॉर्ड में मरा हुआ था। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, क्योंकि एयरफोर्स ने हेडक्वार्टर से वहां के जो लोकल पुलिस को ये इत्तला कर दी थी कि तुम्हारे गांव का ये व्यक्ति मरा हुआ, तो इन्होंने चेक किया, ये आदमी हमारे गांव का, एक ही नाम का ये आदमी, ये मरा हुआ कैसे, ये तो यहां जीवित है। तो फिर पता लगाया, हाँ ये तो एयरफोर्स में था, तो जीवित है यहां। एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया इन्होंने कि ऐसे ऐसे 8 साल पहले आपने जो हमको इंटीमेशन दिया था, यहां पे तो ये आदमी जीवित है। अब ऐसा तो नहीं कि पुनर्जन्म लेके यहीं गांव में पैदा हुआ उसे। तब 8 साल बाद उसकी फाइल खोली गई, और फिर एयरफोर्स की पुलिस आई और जब इसको पकड़ा, और इसे उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये भौतिक संसार के जो नियम है ना, ये इतने कड़क हैं और इतने प्रिसाइज हैं कि कोई कितना भी प्रयास करे भागने का, भाग के जाएगा कहां? पूरी सृष्टि भगवान की है, कौन से यूनिवर्स में जाएगा भागकर, कौन से प्लैनेट में, कहां कहां जाएंगे भागकर? इसलिए भगवान कहते हैं ताम स्थितिक्षस्व, जब तक हो सहन करो इस भौतिक संसार को भी और अपने कर्मों को भी। तो जो सबसे पहला कारण, नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, तो इससे अच्छा यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सहन करें एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त हो। जब करना ही है सहन, तो क्यों ना भगवान के लिए सहन करें, है कि नहीं? क्यों इस भौतिक संसार में इस प्रकृति के लिए ये जन्म मरण सहन करें। दूसरा कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा दिया गया। 11वें स्कंद की टीका में सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो साधक तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना, जिसके अंदर टॉलरेंस की व्याख्या की गई है, और न धनम न जन्म न सुंदरीम, इस श्लोक का जो ठीक से पालन नहीं करता, जो देवता होते हैं वो फिर बहुत विशेष विपदा उस साधक के जीवन में डालते हैं। स्पेशल ऑब्स्टिकल्स आर पुट बाय द डेमीगॉड्स इन द लाइफ ऑफ दैट साधका हु डजंट फॉलो दीज टू वर्सेस। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं वो सब जन्म सुंदरिम इन सब के पीछे रहते हैं, और वो जब देखते हैं कि कोई भक्ति करते हुए इसकी इच्छा कर रहा है तब फिर वो विशेष विपत्ति उसके जीवन में डालते हैं। लेकिन कोई भक्ति करते हुए इसकी इच्छा नहीं कर रहा है तो वो भी रिलैक्स्ड रहते हैं कि फिर ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि देवता जो उनका कॉम्पिटिटर बन जाता है उनमें भी पता डालते हैं। तो इसलिए ये जो सहनशीलता का प्रिंसिपल है ये देवताओं को रिलैक्सेशन दे देता है, और देवता जो हैं वो फिर सहायता करते हैं उस साधक की सहायता करते हैं उसके उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए। तो ये दूसरा कारण है, यदि हमें जो ऑलरेडी इतनी कठिनाई है उसमें और कठिनाई ऐड नहीं करनी है देवताओं के द्वारा, तो तृणादपि सुनी भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर कहते हैं ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है सहनशीलता का। तीसरा कारण कि जब हम टॉलरेट करते हैं या सहन करते हैं भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, जैसे ब्रह्मा जी ने यहां पर कहा कि आप का गुणगान करते हुए आपके लिए जो भक्त आत्मकृतम विपाकम अपने पूर्व कर्मों को सहन करता रहता है, तो इसमें भगवान की वैल्यू बढ़ती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है कि हम जब सहन करते हैं, जैसे कि आज हम ये निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो कोई तीसरा व्यक्ति जब हमें देखता है, हमें पूछता है कि भाई आज के पूरे दिन आप कुछ खाओगे नहीं पियोगे नहीं, किस लिए इतना पूछेगा ना तुरंत, नाम किसका हम लेंगे? भगवान श्री श्री मदन गोपाल जी के लिए। जैसे कदम कानन महाराज हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी, वो बता रहे थे कि जब वो पहली दफा इस्कॉन में आए तो वो आए थे जन्माष्टमी पर, तो उन्हें अब वो एक विदेशी हॉलैंड के रहने वाले, उन्हें क्या पता जन्माष्टमी क्या होता है, भगवान कृष्ण कौन है, आज उनका जन्मदिन है। तो देखे जन्माष्टमी में सारे भक्त लगे हुए हैं दिन रात सुबह से सेवा में, और उन्होंने देखा कि सभी लोग कुकिंग करने में लगे हुए हैं, कोई 108 भोग बना रहा है, कोई शाम के लिए सब भक्तों के लिए भोग बना रहा है। तो देखा सभी कुकिंग कर रहे हैं, तो उनको सबसे आश्चर्य की बात ये लगी कि ये लोग कुकिंग कर रहे हैं और खुद फास्टिंग कर रहे हैं, है ना, दोनों ऑपोजिट है, दिन भर फास्टिंग करेंगे और दिन भर कुकिंग करेंगे, तो ये अजीब लोग हैं ये लोग। तो पूछा किस लिए, किसके लिए कुकिंग किस लिए करे जब खाना ही नहीं है आपको? भगवान के लिए। अच्छा ये कौन है, आओ। तो जब उन्होंने वो, उनका ये साक्षात्कार था कि जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहले देखा तो इतना उसमें आकर्षण या वैल्यू उनके अंदर नहीं दिखा। जब देखा कि इतने सारे ये लोग आज फास्टिंग कर रहे हैं इनके लिए, तो कुछ तो होगा इनके अंदर, तो वो सहनशीलता से किसका वैल्यू बढ़ रहा है, गुणगान किसका हो रहा है, भगवान का। जैसे कि रामायण में इसका वर्णन है कि जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और तकरीबन एक साल रावण ने सीता को लंका में रखा था और प्रभु श्री राम को एक साल लगा सीता को फिर से वापस लाने के लिए, तो वो एक साल प्रभु श्री राम हनुमान जी सुग्रीव और जितनी पूरी वानर सेना के साथ सारी योजनाएं बना रहे थे। तो सुग्रीव हनुमान जी सारी वानर सेना को लेके योजनाएं ये बना रहे थे कि कैसे लंका पहुंचे, सीता देवी को वापस लाएं, और फिर अंत में जो युद्ध हुआ पूरी वानर सेना लगी हुई थी। तो ये बताया गया है कि जब सीता वापस आ रही थी, लंका से वापस आ रही थी, तो सबसे ज्यादा सीता देवी को देखने के लिए उत्सुक कौन थे, ये वानर। प्रभु श्री राम से भी ज्यादा उत्सुक ये वानर थे, कह रहे जिसके लिए पूरे साल भर हमने इतना खून पसीना बहाया, देखो तो कौन है वो, ये हर बार सीता को लाना है, सीता को लाना है, सीता ये सीता वहां है, सीता को इसने हर अपहरण कर लिया, सीता सीता ये है कौन सीता। तो वैसे ही जब कोई बाहर वाला सुनता है कि आज ये भी निर्जल कर रहा है, वो भी निर्जल कर रहा है, सब लोग निर्जल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो नहीं शाम को पूछेंगे, तो फिर लगता है कि हाँ फिर इतने लोग ऐसे भगवान के लिए कर रहे हैं तो मतलब उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव रीजन है टॉलरेंस का कि हम जो भी कुछ सहन करते हैं उसमें भगवान का गुणगान होता है, भगवान का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। चौथा कारण यह है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए सहन कर कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान उस ऑफरिंग को जो हमने बहुत, जो कहते हैं ना जद्दोजहद कर बहुत यतन कर बहुत सहन कर कुछ सैक्रिफाइस कर जब उसको हम ऑफर करते हैं तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्री ऑफरिंग होती है। हाँ जो एकदम आसानी से, इसलिए तो कदम कानन महाराज को वो इतने प्रभावित क्यों हुए कि हाँ कुकिंग तो ये लोग रोज करते होंगे इन भगवान के लिए, लेकिन आज जो ये कुकिंग कर रहे हैं, जब ये खुद फास्टिंग कर रहे हैं, इसलिए जो आप डीटी किचन में कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए फास्टिंग करते, हमारे दंडवत प्रणाम, कि क्या चेतना है, सब भगवान के लिए। तो भगवान को आज का ऑफरिंग बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि कई बार जब दूसरे दिन हम कुकिंग करते हैं तो अरे बाद में तो मिलेगा ही ना, आज तो बाद में भी नहीं मिलने वाला। तो वो जो उसका वैल्यू होता है उस ऑफरिंग का। इसलिए कहा गया है कृष्णा वैल्यूज दैट ऑफरिंग द मोस्ट विच इज ऑफर्ड अन टू हिम विथ लॉट ऑफ स्ट्रगल। जैसे इस भौतिक संसार में भी देखिए, किसी व्यक्ति का हृदय जीतना है। वो मुझे याद है एक बचपन में एडवर्टाइजमेंट आता था विक्स वेपोरब का, वो गया है, बारिश आ रही है, बाहर जाके बागीचे में गया, भीगते हुए छोटा लड़का, फिर वापस घर पर आता है और उसकी मां खोलती है और ये छींकता है, सबसे पहले छींकता है तो मां डांटती है, किसने कहा था बारिश में बाहर जाने के लिए, सर्दी हो गई। फिर वो पीछे से फूल निकालता है, हैप्पी बर्थडे मम्मी, बस पिघल गया हृदय। क्यों पिघल गया? उसने कितने सारे वर्ष हैप्पी बर्थडे बोला होगा, लेकिन अभी इतना कष्ट लेके सर्दी जुखाम अपने ऊपर सहन करते हुए जो ये फूल अर्पित कर रहा है, तो इसने जो हृदय उस समय जीता वो पहले कभी नहीं जीता था। भक्ति तीर्थ स्वामी जब उन्हें कैंसर हुआ उस समय 2005 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और ऐसा कैंसर उन्हें हुआ था कि उनके अंदर की जो हड्डियां थी वो टूटने लगी थी, इतने वो कमजोर हो चुके थे। तो मुझे याद है कि वो हर संडे को ऐसी हालत में भी संडे फीस्ट लेक्चर देने के लिए वो आते, उनके उनको उठाकर लाना पड़ता, और वो जो उन्होंने प्रवचन दिए वो कुछ जितने एक हाथ संडे वो जिए, हम लोग थे वहां पर गीतानगरी फार्म पर वो रहते थे। तो उन्होंने अपने एक संडे फीस लेक्चर में एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी, ऐसी बात थी कि कठोर से कठोर हृदय पिघल जाए किसी का। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुझे बहुत विशेष रूप से हो रहा है। उन्होंने कहा जैसे भगवान श्री कृष्ण नरसिंह रूप में दर्शन दिए प्रहलाद को, और अलग अलग रूप में अलग अलग भक्तों को दर्शन दिए, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं ये कैंसर सेल्स के द्वारा। He is giving his darshan unto me by incarnating himself as my cancer cells. कि ये जो कैंसर के सेल हैं ये मुझे एक क्षण सोने नहीं देते, 24 घंटा जो मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कैंसर सेल के वजह से, तो मैं 24 घंटा भगवान का नाम ले पा रहा हूं। ये उनका दृष्टिकोण था। ये कैंसर सेल यदि नहीं होते मेरे शरीर में तो मैं रात को सो जाता, भगवान को भूल जाता, और क्योंकि ये कैंसर सेल मुझे इतना पीड़ा दे रहे हैं तो उस पीड़ा के वजह से केवल भगवान का नाम ही मेरे जिह्वा पर आ रहा है। तो ये उनका साक्षात्कार था। जैसे कि परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने क्या कहा, द्विज शाप रूप, कि भगवान श्री कृष्ण इस द्विज शाप के रूप में मेरे जीवन में आए। उस वो जो श्रृंगी है, वो श्रृंगी ने जो श्राप दिया उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, परीक्षित महाराज कहते हैं। जैसे कि स्तोक कृष्ण प्रभु, उन्हें भी कैंसर हुआ था, हमारे एक ब्रह्मचारी जो थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, केवल 34 ईयर्स ओल्ड थे उनको जो कैंसर हुआ, तो वो बोल रहे थे, उनका साक्षात्कार ये था कि जब उन्हें कैंसर हो गया और सभी पूरे भक्त समाज को पता लगा, वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और बस लास्ट स्टेज में उनका कैंसर था, तो वो कहे कि जितना मुझे जब कैंसर नहीं था, जितना मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहा, मुझे उस पूरी अवधि में जितना राधानाथ महाराज और बड़े बड़े सन्यासियों का संग नहीं मिला, वो कैंसर की अवस्था में मुझे मिला। तो उनके कहने का मतलब ये था, वो हमको ये बोल रहे थे कि आप जो अपने आप को इतना स्वस्थ मान रहे हो, बहुत दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि राधानाथ महाराज कहां यूरोप में से कॉल करते, अमेरिका से कॉल करते, लंदन से कॉल करते, तो पूछे कि आपको कितना फोन कॉल मिला है राधानाथ महाराज का जीवन में, एक भी नहीं मिला है। तो वो ये बोल रहे थे कि ये जो मैं सहन कर रहा हूं कैंसर की पीड़ा, इसका रिजल्ट क्या है, गिरिराज महाराज कॉल कर रहे हैं, राधानाथ महाराज कॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े सन्यासी कॉल कर रहे हैं, और वो जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, जनानिवास प्रभु और वृंदावन के बाबा जी हमारे नंदगांव के बरसाना के, वो महाप्रसाद लेकर, मायापुर का महाप्रसाद लेकर, वृंदावन का महाप्रसाद लेकर, उनके गुरु उनके निकट खड़े, तो वो यही धन्यवाद दे रहे थे कि ये जो मेरे साथ बीत रहा है, अर्थात जिस चेतना में मैं हूं, ये इसीलिए हूं कि मुझे कैंसर हुआ। तो वो भी अपने उस कैंसर के डिजीज को धन्यवाद दे रहे थे जिसके वजह से उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहां पर आज के श्लोक में और जो हमने उदाहरण लिए भक्ति तीर्थ महाराज और स्तोत्र कृष्ण प्रभु, इससे यह समझ में आ रहा है कि टॉलरेंस अपने आप में कोई गुण नहीं है। भौतिक संसार में बाहर भी लोगों को कैंसर होता है, यह नहीं कि खाली भक्तों को ही कैंसर होता है, बाहर भी कितने मरीज हैं कैंसर के, लेकिन एक भक्त जब उसे सहन करता है तो क्यों उसका गुणगान किया जा रहा है या उसे सौभाग्यशाली बताया गया है। यह कहा गया है कि टॉलरेंस इज पैसिव, बट व्हेन यू ग्लोरीफाई कृष्णा एंड थैंक कृष्णा ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर टॉलरेंस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव टॉलरेंस। इसलिए आज के श्लोक में ब्रह्मा जी केवल यह नहीं कह रहे कि वो बोलते ना अपनी मुट्ठी भींच के वो टॉलरेट कर रहा है, नहीं, वो उस आज के इस श्लोक का अनुवाद है, जो व्यक्ति अपने पूर्व दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए करता क्या है, अपने मन वाणी तथा शरीर से वो आपका गुणगान करता है। ये दोनों होना चाहिए, ये नहीं कि खाली टॉलरेट करते रहें। इसलिए निर्जल एकादशी के समय केवल ये नहीं कि बस पानी नहीं पीना है, नहीं पीना है, पानी 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 नहीं। जैसे मुझे याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में जब एक बार एक ऐसी स्थिति थी, इतनी गर्मी थी और बहुत से भक्तों की बहुत हालत खस्ता हो गई थी, वो पांडव निर्जल के दिन, तो मुझे याद है दूसरे दिन द्वादशी के दिन असली टेस्ट होता है, सुबह की मंगल आरती, जो द्वादशी की मंगल आरती होती है, और सबसे अच्छी आरती मुझे लगी थी तुलसी आरती। और तुलसी आरती में जो हमारी प्रदक्षिणा का मंत्र है ना, यानी कानी चप पानी, उसके अंदर पानी, पानी एक शब्द सुनाई दिया, मुझे याद है जब पहली पांडव निर्जल एकादशी मैं वृंदावन में था, मैंने सोचा वृंदावन में करते हैं, बहुत मैंने हिम्मत की थी वृंदावन में पांडव निर्जल करने की। तो वो जो कृष्ण बलराम मंदिर में पूरी रात भर एक एक घंटे में वो घंटा बजा था ना सिक्योरिटी, वो सारे रात भर मुझे हर एक घंटे में घंटा सुनाई दे रहा था। अरे एक ही बार मारा, एक ही बजा अभी तक, दो बार, दो बज गया, तीन बज गया, चार बज गया, और हरे कृष्णा, और फास्ट ब्रेकिंग टाइम वो 10 बजे था। सोचो फास्ट ब्रेकिंग टाइम 10 बजे, तो पूरी रात भर जय श्री श्री महाराधा मदन गोपाल जी की, जो पूरी रात भर मुझे केवल जो अलग अलग बचपन से लेके तब तक मैं जितने सरोवर में स्विमिंग किया था, जितने स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया था, जितने शरबत पिए थे मैंने, जितने मिल्क शेक्स पिए थे, वो सारे याद आने लगे। तो वो टॉलरेंस उसे नहीं कहते, एक्टिव टॉलरेंस जो ब्रह्मा जी यहां पर बोल रहे हैं। इसलिए एक सुंदर कहावत है अंग्रेजी की, कहा गया है इट इज नॉट वेरी ग्लोरियस टू हैव पेशेंस बट द ग्लोरी ऑफ पेशेंस इज हाउ यू बिहेव व्हाइल यू आर वेटिंग पेशेंटली। तो धैर्य अपने आप में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है, लेकिन उस पीरियड में आप कैसे व्यवहार कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जो कारण है, कृष्णा वैल्यूज द मोस्ट दैट ऑफरिंग विच इज डन आउट ऑफ सैक्रिफाइस एंड सम ट्रिबुलेशन। जैसे महाभारत के पश्चात एक बहुत सुंदर घटना हुई, अर्जुन महाभारत के युद्ध के पश्चात वो अश्वमेध यज्ञ के लिए युधिष्ठिर द्वारा नियोजित किए गए थे। तो ये अश्व जा रहा था अलग अलग प्रांतों में, और जो भी ललकारता इस अश्व को, घोड़े को, तो अर्जुन उसके साथ युद्ध करते और उसे हराते और फिर उसे युधिष्ठिर महाराज के अधीन बनाते, उस राजा को, उस राज्य को। तो ये एक राजा हुए बहुत ही अनन्य भक्त भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम था मयूर ध्वज। और इनकी ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे मयूर ध्वज की सहनशीलता और उनकी ऑफरिंग को देखकर। तो जब अर्जुन इनके राज्य में पहुंचे राजा मयूर ध्वज के, तो राजा मयूर ध्वज के पुत्र, उनका नाम था ताम्र ध्वज, और ये ताम्र ध्वज बहुत बड़े योद्धा धनुर्धर, और ताम्र ध्वज के रोल मॉडल थे अर्जुन। अर्जुन को ये अपना रोल मॉडल मानते थे ताम्र ध्वज। और जब अर्जुन वहां पर आए तो अर्जुन को ये उनका जो कौशल था धनुर्विद्या का, वो अर्जुन को दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का अपना युद्ध कौशल दिखाया कि अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन आश्चर्यचकित कि आज तक मैं किसी से हारा नहीं, ये कौन है ये जिससे मैं हार गया आज? तो जरूर इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। तुरंत गए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये कौन है ये, और किसका राज्य है जिसके अंदर मैं अर्जुन आपका अर्जुन हार गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहे, वो राजा मयूर ध्वज के जैसा जो भक्त है आज तक मैंने नहीं देखा, और उसका वो पुत्र ताम्र ध्वज, क्या है उसके अंदर ऐसा विशेष कि आप इतना उसका गुणगान कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपने ही आंखों से देखो कि ये राजा मयूर ध्वज की भक्ति की श्रेणी क्या है, कौन से स्तर पर है ये। तो भगवान अपना भेष बदल जाए एक ब्राह्मण के रूप में और अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर वो ले जाते हैं। और जैसे ही राजा मयूर ध्वज के राज्य में पहुंचते तो राजा मयूर ध्वज ब्राह्मण देखते हैं, ब्राह्मण के शिष्य को देखते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं और आदर सत्कार कर कर पूछते हैं कि क्या आपको मैं भेंट में अर्पित करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा मयूर ध्वज से कि मैं रास्ते में आ रहा था और रास्ते में एक शेर बकरी को खाने वाला था, तो मैंने उस बकरी की रक्षा की तो वो शेर ने कहा कि ये मेरा भोजन है आज का, यदि तुम इस बकरी की रक्षा करने चाहते हो तो इसके बदले में मेरा भोजन प्रदान कर कर दो, तभी मैं इस बकरी को छोड़ूंगा। तो मैंने जब उस शेर से पूछा कि इसके बदले में क्या चाहते हो तुम, कौन सा भोजन मैं तुम्हें ला कर दूं, तो शेर ने कहा कि मुझे राजा मयूर ध्वज का आधा शरीर चाहिए कटा हुआ, वो खाना है मुझे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में, अब अर्जुन नहीं जानते थे कि इस प्रकार का टेस्ट करने वाले हैं, तो अर्जुन जो शिष्य के रूप में अब भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पर खड़े, वो देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं आप। तो भगवान श्री कृष्ण राजा मयूर ध्वज से कहते हैं तो मैंने अपना वर्ड में देकर आया हूं उस शेर को कि मैं तुम्हारा भोजन जो तुमने मेनू फिक्स किया है वो पूरा करके रहूंगा आज। राजा मयूर ध्वज का आधा कटा हुआ शरीर, तो राजा मयूर ध्वज ने जैसे ही ये सुना, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, अरे आप को स्वयं इतना परेशान होकर यहां पर आने की क्या जरूरत थी, आप अपने शिष्य को भेज देते या किसी दूत को भेज देते, मैं स्वयं वहां पर आ जाता तो हां चलो ठीक है, व्यवस्था की। राजा मयूर ध्वज ने तुरंत व्यवस्था की, क्या व्यवस्था, कि जीते जी उनका शरीर के दो भाग हों और कटा हुआ आधा भाग उस शेर को भोजन के रूप में दिया जाए। तो जैसे ही व्यवस्था की तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बोले, नहीं 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 नहीं, उसकी एक और शर्त थी उस शेर की जो मैं भूल गया बताना। शर्त यह थी कि हे राजा, तुम्हारे शरीर को तुम्हारा बेटा काटेगा और कोई नहीं। अर्जुन वहां पर अब पसीने पसीने हो रहे हैं कि भगवान ये क्या कर रहे हो, ये तो निर्दयता है। तो भगवान बोले, तुम्हें जानना था ना राजा मयूर ध्वज के भक्ति का स्तर क्या है, अब देखो। तो अब ताम्र ध्वज जो मयूर ध्वज के बेटे, उनको तलवार दी गई और फिर कहा गया कि अपने पिता को आधा काटो। तो ताम्रध्वज, उसकी आंखों से आंसू, उसने कहा कि नहीं, मैं इसे देखते हुए नहीं कर सकता। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन राजा मयूर ध्वज ने कहा कि यदि तुम मेरे पुत्र हो और यदि तुम मेरे पुत्र कहलाना चाहते हो अपने आप को, तो ये मेरा आदेश है कि तुम्हें ही मेरा शरीर आधा काटना होगा। तो ताम्रध्वज कहता है कि नहीं, मैं अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकता, तो उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। और जैसे उसने काटना शुरू किया राजा मयूर ध्वज को, वही उसी राजा का पुत्र ताम्र ध्वज वो तलवार लेकर अपने ही पिता को आधा काटना जब उसने शुरू किया, जब उसने कुछ काट दिया था राजा मयूर ध्वज का सर का भाग, राजा मयूर ध्वज के आंखों से आंसू टपकने लगे। और भगवान श्री कृष्ण उस समय ताम्र ध्वज को रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे ये ऑफरिंग जो रोते रोते दी जाए। आई डोंट वॉन्ट दिस ऑफरिंग विच इज गिवन ग्रजिंगली। रो के कोई ऑफरिंग दे रहा है तो मुझे वो ऑफरिंग पसंद नहीं है। तो यहां पर राजा मयूर ध्वज जब भगवान श्री कृष्ण सुनते, तो सोचो अर्जुन की क्या हालत हुई। अर्जुन बोले, भगवान ये तो लिमिट के बाहर जा रहे हो। एक तो उसका वो शेर को खिलाने के लिए इसका आधा कटा शरीर राजा का, क्या गलती इसने की है? और वो भी उस पर शर्त कि बेटा काटेगा, वो काट भी रहा है, दे रहे हैं ऑफरिंग, अरे वो रोएगा नहीं तो हंसेगा क्या? और वो रो रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये ऑफरिंग नहीं चाहिए जो रोते रोते दी जाए। तो राजा मयूर ध्वज वो क्यों रो रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना। राजा मयूर ध्वज ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपको ये ऑफरिंग रोते रोते इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे बुरा लग रहा है कि आप मेरा आधा शरीर क्यों ले रहे हो। ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं केवल अपना आधा शरीर ऑफर कर पा रहा हूं आपको, पूरा क्यों नहीं मांगा आपने? These tears are coming from my eyes because you only asked half of my body. तो क्या मेरे में ऐसी कमी रह गई कि आप केवल आधा मेरा शरीर मांग रहे हो? ये मैं सोच रहा था, इसके वजह से आंसू आ रहे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे। और फिर अर्जुन की ओर देखकर उन्होंने कहा, तो अब जान गए कि ये ताम्र ध्वज जिनका पुत्र है वो क्यों तुम्हें हरा सका, क्योंकि इसके पिता के ऐसे गुण। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं कि, हालांकि फिर से उन्होंने मयूर ध्वज को फिर अपना दर्शन दिया और दर्शन देने के पश्चात मयूर ध्वज का शरीर पुनःस्थापित कर दिया, लेकिन इसमें यहां तक तो हम मयूर ध्वज के जो गुण हैं, ऐसे गुण कि अपना आधा शरीर भी कट रहा है लेकिन रो रहे हैं कि पूरा शरीर क्यों नहीं लिया भगवान ने मेरा, इससे ज्यादा मयूर ध्वज का गुणगान हुआ है कि वो जानते नहीं थे कि ये कृष्ण है। वो तो ये समझ रहे थे कि एक साधारण सा कोई ब्राह्मण यहां वहां घूमता फिरता आया है मेरे राज्य में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहे कि मैं साक्षात कृष्ण बनकर जब किसी से कुछ मांगता हूं तो कोई दे दे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भगवान हूं तो मुझे तो कोई देगा ही। लेकिन मैं अपना भेष बदल कर गया था वहां पर, तो वो जानते नहीं थे राजा मयूर ध्वज कि मैं साक्षात भगवान हूं और ये अर्जुन है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था, क्यों उन्होंने ब्राह्मणों को अपना स्वयं का बलिदान दिया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान यहां पर ये दिखा रहे थे कि जो मेरे भक्तों के लिए सब कुछ सहन करता है वो ऑफरिंग सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है। तो ये चौथा कारण कि भगवान के लिए जब एक भक्त कुछ सहन करता है तो वो क्यों करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लीजिंग ऑफरिंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। पांचवा कारण ये बताया गया है कि जब हम सहन करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं, साधना करते हैं, तो शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जल्दी होता है उस समय। प्यूरिफिकेशन इज द क्विकेस्ट व्हेन वी परफॉर्म अवर साधना वाइल टॉलरेटिंग ऑल द प्रीवियस कार्मिक रिएक्शंस। जैसे कि तमाल कृष्ण महाराज, जब उन्हें जुहू का प्रोजेक्ट संभालने के लिए प्रभुपाद ने कहा, उस समय वहां पर इतनी तकलीफें थी, रहने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। तमाल कृष्ण महाराज जो कि अमेरिका में पले बड़े, जहां पर सारी सुख सुविधा बचपन से लेकर उन्हें प्राप्त हुई थी, यहां पर झोपड़ों में रहना पड़ रहा था, जहां पर मच्छर थे, चूहे थे। तो प्रभुपाद के पास जाकर तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वी अमेरिकन्स टू फॉलो सच अ रिजिड एंड स्ट्रिंजेंट लाइफस्टाइल। तो प्रभुपाद ने केवल एक लाइन में उनको उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा, डोंट यू वॉन्ट टू बिकम प्यूरिफाइड क्विकली? तो प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जल्दी कब होता है? जब हम उस सहनशीलता की स्थिति में अपनी साधना करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जब हम अपने कृष्ण भक्ति में सब कुछ हमारे अनुसार जब हो रहा होता है तब भक्ति करते हैं, तो उसमें हम भगवान को कैजुअली लेना ले लेते हैं। और जब हमारे अनुसार हमारी स्थिति नहीं है और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कभी हमें कैजुअली नहीं लेते। जैसे वो उदाहरण है ना, जगन्नाथपुरी का मंदिर का जमादार, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने रोज झाड़ू लगाता है और इतने सारे यात्री आते जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। इसको बोलते कि भाई तू कितना भाग्यशाली है, तू तो यहीं पे रहता है, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने रोज झाड़ू लगाता है, तू तो कितना दर्शन करता होगा भगवान का, और वो आज तक कभी अंदर नहीं गया था। क्यों? वो ये बोलता था, मैं तो इधर ही रहता हूं, तुम लोग सब दूर दूर से आते हो, तो इसलिए तुम लोग जाओ दर्शन लो, मैं तो कभी भी ले लूंगा, और ऐसा कभी भी ले लूंगा करते करते मर गया हो, कभी दर्शन लिया नहीं उसने। तो कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, मैं तो मंदिर के पास ही रहता हूं, ये सारे कार्यक्रम उनके लिए जो दूर रहते हैं, मैं तो कभी भी आ सकता हूं मंदिर, कभी भी आ सकता हूं, और कभी नहीं आता फिर। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं, इन अवर साधना व्हेन वी परफॉर्म अवर साधना कैजुअली, इवन इफ वी आर परफॉर्मिंग साधना फॉर कृष्णा, कृष्णा टेक्स अस कैजुअली एंड देन वी बिकम कैजुअलिटी। तो इसमें उदाहरण है नलकुंवर और मणिग्रीव का। नलकुंवर और मणिग्रीव वो कहां रहते थे? श्राप मिलने से पहले, दामोदर लीला में बताया गया है कि श्राप मिलने से पहले नलकुंवर और मणिग्रीव वो कैलाश धाम में रहते थे, भगवान शिवजी के अनुचर। सोचो, जो परम वैष्णव शिवजी उनके एसोसिएशन में, उनके धाम में रहते थे, लेकिन जो प्यूरिफिकेशन इनका हुआ कब? जब ये वृक्ष के रूप में थे। स्पीड बोल रहे हैं, प्यूरिफिकेशन का जो स्पीड, वो वहां पर रहते हुए नहीं हुआ था उनका, क्योंकि वहां पर सब कुछ वो कैजुअली ले रहे थे। कौन? नलकुंवर मणिग्रीव। दे वर टेकिंग, वहां पर भी कृष्ण भक्ति हो रही थी, भगवान जो शिवजी हैं उनके धाम में केवल कृष्ण भक्ति होती है। तो वहां पर भी कृष्ण भक्ति हो रही थी, लेकिन वो बहुत कैजुअल भक्ति हो रही थी उनकी। लेकिन जब नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया और वृक्ष बना दिया, तब फिर उनका प्यूरिफिकेशन एकदम इंटेंस हो गया। वो फिर उनके प्यूरिफिकेशन का जो स्पीड है वो टॉप गियर में। तो नलकुवर और मणिग्रीव का ये उदाहरण दिया गया है। एक और श्रीमद् भागवत में उदाहरण है महाराज चित्रकेतु का। महाराज चित्रकेतु वो भी भगवान के अनन्य भक्त, एक विद्याधर, विद्याधर लोक के बहुत ऊंचा लोक है, एक स्वर्ग लोक है विद्याधर लोक, वहां के वो निवासी भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन एक दिन वो देखे एक ऐसा दृश्य, शिवजी प्रवचन दे रहे हैं बड़े बड़े वैरागियों को और माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है और लेक्चर दे रहे हैं रेनन्सिएशन के ऊपर। तो महाराज चित्रकेतु थोड़े मुस्कुराए, और वो इसलिए मुस्कुराए थे कि केवल शिवजी कर सकते हैं ऐसा, उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन माता पार्वती ने जब देख लिया तो तुरंत श्राप दे दिया कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ तुम, और वो बने वृत्रासुर। तो महाराज चित्रकेतु अंत में माता पार्वती को धन्यवाद देते हैं कि आपके श्राप की वजह से जो मेरी भक्ति की गाड़ी एकदम कैजुअली चल रही थी, अब एकदम इंटेंस हो गया है। और वो जब माता पार्वती को धन्यवाद देते हैं, हालांकि यहां पर शिवजी कहते हैं, माता पार्वती को डांटते हैं कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलती है कि तुमने चित्रकेतु जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त को ऐसा श्राप दिया। तो शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि महाराज चित्रकेतु जैसे जो भक्त होते हैं, अपनी ऐसी भक्ति के द्वारा, ऐसे डिस्पोजिशन के द्वारा, वो तुम जैसी सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर दिखते हो। वो कहते हैं माता पार्वती से सुंदर कौन हो सकता है इस सृष्टि में। शिवजी कहते हैं डिवोटीज लाइक महाराज चित्रकेतु आर इवन मोर ब्यूटिफुल देन यू। और वो जो सुंदर श्लोक है, नारायण परा सर्वे न कुटश्च न भिव्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने सैकड़ों बार अपने प्रवचन में कहा, यही इस प्रकार का ही श्लोक है वो, कि जो नारायण परायण है वो, उनको चाहे आप नरक में फेंको चाहे स्वर्ग में फेंको, कहीं पर भी फेंको, उनका केवल एक ही उद्देश्य है और वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है वासुदेव, जिसे लेप्रेसी कुष्ठ रोग हुआ था। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भक्त, केवल चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भक्त नहीं, हर एक जीव को ये अपना स्वामी मानता। तो ऐसा कुष्ठ रोग वासुदेव को हुआ था कि उसके पूरे शरीर में पस हो गया था, और वो जो पस हो गया था पूरे शरीर में, हर एक वो जो वुंड था, घाव था, पस से भरा हुआ, उसके अंदर कीड़े भरे हुए थे, और कोई इस वासुदेव के निकट नहीं जाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा, ये देखा कि कोई भी कीड़ा उस पस से भरे हुए घाव से नीचे गिर जाता तो वासुदेव उस कीड़े को उठा के फिर से उस घाव में रखते। तो पूछा गया कि क्यों करते हो ऐसा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा शरीर वैसे भी किसी काम का नहीं, कम से कम ये कीड़ा तो भोग ले आनंद। ये उनका भाव, और ऐसे भाव को देखते चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव जिनको, जिनका शरीर पूरा उस पस से भरा हुआ, आलिंगन किया, और आलिंगन करते ही वासुदेव को ऐसा शरीर दे दिया, इतना सुंदर शरीर दे दिया। लेकिन वासुदेव ने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु से, नहीं भगवान, ये आपकी कृपा नहीं मेरे ऊपर, ये तो आपने मुझे दंडित कर दिया ऐसा शरीर देकर, क्योंकि इतना सुंदर शरीर प्राप्त कर अब मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, अब लोग मेरा गुणगान करेंगे, तो मुझे वो पस से भरा हुआ शरीर ही अच्छा लगता है जिसके अंदर मैं नम्र बना रहूंगा। तो ये उदाहरण है वासुदेव जिनका शरीर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का बनाया, और उदाहरण है कुब्जा का, कि कुब्जा जो कि एक कुबड़ी स्त्री थी और भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन कुब्जा और वासुदेव में अंतर क्या है कि कुब्जा फिर वो शरीर को प्राप्त करने के बाद उसके अंदर वो शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं रही, लेकिन यहां पर वासुदेव जो उस अवस्था में रहे, कुष्ठ रोग की अवस्था में रहे, उनका जो प्यूरिफिकेशन वो देख रहे थे वो इतना जल्द हो रहा था। तो इसलिए बताया गया है कि यदि हमें हमारा प्यूरिफिकेशन इसी जीवन में सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी करवाना है, तो जितना ज्यादा हम इस कष्टों को सहन करेंगे और सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली, ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली, इतना वो इंटेंस उन्होंने अपने आप अपने भक्ति को बना लिया। और परीक्षित महाराज का उदाहरण आज के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षित महाराज ने निर्जला की 7 दिन 7 रात, और भागवत चालू था, निरंतर भागवत का श्रवण चालू था, इसलिए परीक्षित महाराज अंत में उस श्रृंगी को धन्यवाद देते हैं कि उसके श्राप की वजह से मेरा शुद्धिकरण इतना जल्द हुआ, इतना क्विक। तो हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि वो क्यों उस श्रृंगी को इतना धन्यवाद दे रहे थे। परीक्षित महाराज कहते हैं कि उस श्रृंगी के वजह से जो मेरे राज्य के प्रति आसक्ति थी, मेरे परिवार के प्रति आसक्ति थी, उसने उसको काट दी। वो श्राप नहीं था, वो वरदान था, उसने काट दिया वो। तो उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं कि मान लो आप बंधे हुए हो, जंजीरों से बंधे हुए हो, और कोई आपको आकर एक तलवार दे या चाकू दे उस जंजीर को काटने के लिए, तो क्या दे रहा है? चाकू दे रहा है, लेकिन किस लिए दे रहा है? जंजीर को काटने के लिए, आपके बंधन से आपको मुक्ति कराने के लिए। तो क्या आप उसे अपना मित्र मानोगे या शत्रु मानोगे? तो परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि श्रृंगी ने मुझे जो श्राप दिया वो उसी तलवार के समान है जिस तलवार को लेकर मैंने अपनी जंजीरें काट दी भवबंधन की। और फिर 7 दिन में 7 रात में परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हुई। तो वो श्राप नहीं होता तो परीक्षित महाराज कह रहे थे मैं अपने राज्य में रहता और जो भी कुछ करता, पता नहीं कौन से समय फिर मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होती। छठा कारण सहनशीलता का, कि भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो सहनशीलता का गुण नहीं हो तो भक्तों के संग में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विशेष रूप से क्योंकि भगवान कौन से भक्त को इस्तेमाल करें हमें शुद्ध करने के लिए हमें नहीं पता, और कई बार भगवान भक्तों को इस्तेमाल करते हैं, हमारे एकदम जो हमारे पड़ोसी होते हैं, बगल वाले, उनको इस्तेमाल करते हैं, जो आश्रम में रह रहे हैं हमारे साथ उन्हीं को भगवान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जगाई मधाई जो कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के ऊपर उन्होंने प्रहार किया जब वो प्रचार करने के लिए गए थे, महाराज बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे जगाई मधाई ने जो प्रहार किया नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो भक्तों के संग में कई बार भगवान कुछ जगाई मधाई के प्रतिनिधि को भेज देते हैं। ताकि हम जो भी प्रचार कर रहे हैं, यदि उस प्रचार में हमारा अहंकार हो जाए तो उस अहंकार की इमारत से नीचे उतरने के लिए, हमें नम्र बनाने के लिए। तो इसलिए जितना हम भक्तों के संग में ये सहनशीलता का गुण पालन करेंगे, उतना भक्तों के संग में वो एसोसिएशन हमारा इजी होगा और प्रचार हम सही रूप से कर पाएंगे। नहीं तो यदि भक्तों में ही आपस में वो अपने एक दूसरे का संग सहन नहीं कर रहे, तो फिर वो बाहर प्रचार किस प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए एक हिंदी की कहावत है कि चूल्हे से रोटी निकालते हुए चिमटे को जलना ही पड़ता है। चिमटा होता ना, वो बिना जले वो रोटी को चूल्हे से बाहर नहीं निकाल सकता। तो वैसे ही यदि हमें भक्तों के संग में वो राधा मदन गोपाल जी की रोटी कल खानी है, तो हमें ये जो हमारा चिमटा है भक्तों के संग में, हमें इसे जलाना ही होगा। 1980 में अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई थी कि एक यूनिवर्सिटी में एक राइटर्स क्लब था, तो ये विद्यार्थी, इन्होंने अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम केवल एक दूसरे की जो राइटिंग है उसमें दोष निकालते हैं बस। तो इन्होंने अपने राइटर्स क्लब का नाम रखा रैंगलर्स क्लब, कि बस दोष निकालेंगे एक दूसरे की राइटिंग में। तो उसी यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां थी उनका भी एक राइटर्स क्लब था, तो उन्होंने, होता है ना, ये लोग जो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट हम करेंगे, तो उन्होंने अपने राइटर्स क्लब में ये नियम रखा कि हम केवल ग्लोरीफाई करेंगे एक दूसरे की राइटिंग। तो ये दो राइटर्स क्लब हुए, बॉयज का राइटर्स क्लब जिसके अंदर वो केवल खोट निकाले उनकी एक दूसरे की राइटिंग, और ये लड़कियों ने उसका ऑपोजिट किया। 20 साल बाद रिसर्चर्स ने, जब ये राइटर्स क्लब 20 साल बाद ये किस दशा में थे पता लगाया, तो वो जो बॉयज थे जिन्होंने केवल खोट निकाली थी, उसमें से एक भी राइटर नहीं बना बड़ा होके, यहां तक कि वो एक साधारण लेटर भी नहीं लिख पाते थे। और ये जो लड़कियां थी जिन्होंने गुणगान किया था, केवल 20 साल बाद देखा गया कि उन 25 लड़कियों में से 20 एकदम अच्छी राइटर बनी और बाकी के 5 प्रोफेशनल राइटर बनी। तो ये इसलिए बताया गया है कि ये नहीं कि अब हम भक्तों के संग में चलो मैं सहनशीलता सिखाता हूं दूसरे भक्त को, क्योंकि यदि वो सहनशीलता सीखेगा वो भक्त, तो उसकी भक्ति बहुत स्मूथ होगी। तो वैष्णव सेवा, मेरी तरफ से वैष्णव सेवा, इसका अर्थ ये नहीं है। तो जैसे कि किसी भी परिवार में भी आप लीजिए, कि जब तक वो टॉलरेंस मसल्स उसके स्ट्रांग नहीं होते, उस परिवार में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि परिवार में जैसे सदस्य रहते हैं, और हर एक जो सदस्य है परिवार का, उसका अपना एक ओपिनियन होता है, उसकी अपनी लाइकिंग होती है, अपनी डिसलाइकिंग होती है, और उन सब की लाइकिंग डिसलाइकिंग को टॉलरेट करते हुए परिवार के सदस्यों को रहना पड़ता है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में लीजिए चाहे गृहस्थ आश्रम में लीजिए, ये बिना टॉलरेंस के वो गाड़ी स्मूथली नहीं चल सकती। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी कल्टीवेट करना हमको कॉन्शियसली आवश्यक है, टॉलरेंस की क्वालिटी। किस लिए? ताकि डिवोटी एसोसिएशन हमारा स्मूथ हो, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन के बिना हम भगवत धाम जा ही नहीं सकते। पिछले रविवार हमने इसकी चर्चा की। और यदि मुझे डिवोटी एसोसिएशन में रहना है तो मुझे फिर बहुत से अलग अलग डिवोटीज के व्यू पॉइंट मैं ड्रेसिंग करके आऊंगा। एक डिवोटी बोलेगा क्या किया है आज, दूसरा बोलेगा बहुत अच्छा किया है, तीसरा बोलेगा मैं सिखाऊंगा बाद में तुमको। आपने कुछ भगवान के लिए बनाया, एक डिवोटी बोलेगा वाह प्रभु क्या आज आपने भगवान के लिए बनाया, दूसरा बोलेगा प्रभु थोड़ा नेक्स्ट टाइम आप आना, मेरे असिस्टेंट बन के आना, मैं बताऊंगा। आप कोई लेक्चर दो, कोई आके बोलेगा प्रभु जी आज का लेक्चर मतलब भगवत धाम जाने लायक है। फिर उसी लेक्चर को सुन के दूसरा भक्त बोलता है प्रभु जी रात को सोए नहीं थे क्या। तो हम पूछे क्यों, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो इसलिए जैसे हम पिछली बार ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, चाहे हम भक्ति में कितने भी निपुण बनने का प्रयास करें, इस्कॉन ऐसी संस्था है कि कोई ना कोई आपसे अच्छा पैदा हो ही जाएगा। और है, हो चुका है पैदा है कहीं, तो हमको नहीं पता। हम केवल हमारे कूप मंडूक में रह के हमको लगता है मैं सबसे अच्छा प्रचारक हूं। क्यों? क्योंकि यहां से बाहर कभी प्रचार किया ही नहीं है। मैं सबसे अच्छा कुक हूं, मैं सबसे अच्छा ड्रेसर हूं, मैं सबसे अच्छा कीर्तनिया हूं, ये वो। सो ऑलवेज देयर इज अ बेटर एग्जाम्पल देन अस। क्यों? क्योंकि भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन में यदि हम सहनशीलता का क्वालिटी नहीं पालन कर सकते तो कहां पालन करेंगे फिर। तो ये छठा कारण। एक हमारे वैष्णव आचार्य, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कई बार वैष्णव एसोसिएशन में कोई भक्त बहुत क्रोधी स्वभाव के, गुस्से वाले हो जाते हैं ना, तो भगवान उनको छोड़ते नहीं। हाँ, बहुत गुस्सा उनके अंदर, सहन नहीं होता है, गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और भी भक्तों के ऊपर। तो भगवान उनको एक विशेष सर्विस देते हैं, यमदूत बना देते हैं उनको। चलो ठीक है, मेरी सेवा में रहो लेकिन यमराज के अंडर। गुस्सा उतारना है ना, जाओ पापियों के ऊपर उतारो गुस्सा। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, एंग्री डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दे गेट एम्प्लॉयड इन यमलोका, सो बी केयरफुल। सातवां कारण सहनशीलता के गुण को अपनाने का यह है कि बड़े बड़े भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने उदाहरण से यह बताया है कि उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है उस सहनशीलता के कारण, जैसे कि पांडव। इसलिए आज है पांडव निर्जल। केवल निर्जल नहीं, पांडव निर्जल। वो जो श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी माता ने क्या कुछ नहीं सहन किया हे कौन्तेय। इसलिए वो जो श्लोक है उसके अंदर भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय शब्द से पुकारा है। तो पांडवों ने, माता कुंती ने भीष्म इनके विषय में बताया गया है कि भीष्म पितामह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो उन्होंने सहन किया वो भगवान श्री कृष्ण, ऐसी उन्होंने कृपा की भीष्म पितामह के ऊपर कि स्वयं चलकर पांडवों को लेकर भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए भगवान अपना दर्शन देने के लिए गए, भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, क्यों शारीरिक रूप से बाणों की शैया पर लेटे हुए, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए, बहुत कौन से 10वें दिन वो बाणों की शैया पर लेट चुके थे, वहां से लेके महाभारत के युद्ध के अंत तक 18 दिन युद्ध चला था, उसके बाद भी, और बाण चलाए किसने थे, अर्जुन ने, तो मानसिक रूप से मुझे इस बाणों की शैया पर लेटाया है मेरे ही अर्जुन ने, और इतने बाण अर्जुन ने चलाए थे भीष्म पितामह के शरीर के ऊपर कि एक उंगली भी दो बाणों के बीच से न जा सके, इतनी भी जगह नहीं छोड़ी थी उनके पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक। और उस अवस्था में भीष्म पितामह भागवत धर्म का संदेश दे रहे हैं, भीष्म पर्व सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का, उस अवस्था में सोचिए वो युधिष्ठिर महाराज को धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, और वहां पर सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण ऑडियंस में सुन रहे हैं भीष्म पितामह का वो भागवत प्रवचन। तो ये उनकी सहनशीलता भीष्म पितामह, तो ये जो बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, महाजन हुए, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, पांडव, कुंती इत्यादि, इनके उदाहरण से हम क्या सीख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उस स्थिति में सबसे तीव्रता से होती है जब हम सहन करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं। और अंतिम कारण कि भगवान स्वयं ने इसे निर्धारित किया है हमारे लिए, रिकमेंडेड बाय कृष्णा। व्हाट इज रिकमेंडेड बाय कृष्णा? टू वर्शिप हिम व्हाइल टॉलरेटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवत गीता के जब ये प्रश्न पूछा भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, हे केशव स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते स्थित प्रज्ञ कौन है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त, तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि उनके लक्षण ये है कि वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग कर सकते हैं, ये वो। भगवान कहते हैं दुखेश्वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़ा स्थित प्रज्ञ है कि जो सुख और दुख, लाभ हानि, इन सब में, भय राग क्रोध, इन सब में वो समान स्थित रहता है, उसे सहन करते हुए वो अपनी योग साधना करता है या मेरी साधना करता है, वो है सबसे ऊंचा स्थित प्रज्ञ योगी। तो ये भगवान रेकमेंड कर रहे हैं, और उद्धव गीता में, ये भगवत गीता का रिकमेंडेशन है, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल है। देखो अगर भगवान को एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सोच समझ के वो एग्जाम्पल दिए होंगे, और वो भी किसको दे रहे हैं, उद्धव को, जो कि इतने विद्वान हैं शास्त्रों में। उदाहरण देते हैं वो अवंती ब्राह्मण का। यहां पर आज जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी द्वारा जो कहा गया, इस श्लोक से भी एक ऊंचे स्तर को अवंती ब्राह्मण को कहा गया है कि ये अवंती ब्राह्मण, अवंती देश का ये ब्राह्मण जो शुरुआत में बहुत एक कृपण व्यक्ति था, जो बहुत पैसों का लोलुप व्यक्ति था, और फिर चोर उचक्के इसके पैसे हड़प कर ले जाते हैं, तो फिर इसके परिवार वाले सारा समाज इसको दुत्कार कर घर से बाहर निकाल देता है। और ये अवंती ब्राह्मण की स्थिति ऐसी होती है कि अवंती ब्राह्मण को साधारण से साधारण कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई बच्चे, कोई रास्ते चलता भिखारी या जानवर, ये भी अपमानित करना शुरू कर दिया अवंती ब्राह्मण को। और भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं कि अवंती ब्राह्मण की ऐसी स्थिति हो गई थी कि इसके पूर्व जीवन के वजह से इसे इतना अपमान भुगतना पड़ा कि अब ये विरक्ति का जीवन जी रहा था, एक विरक्त का जीवन जी रहा था। और जो भी भिक्षा में इसे कुछ मिलता तो भिक्षा में मिलने के पश्चात लोग इसे अपमानित करने के लिए उस पर मलमूत्र त्याग देते, थूक देते उसके ऊपर, उसका भिक्षा का पात्र लेकर चुरा कर चले जाते, उसे मारते, कंकड़ फेंकते, अपमानित करते, कटु शब्द बोलते। तो यहां पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक वो भक्त सब कुछ सहन करता है आपके द्वारा दिए गए जो कष्ट, लेकिन यहां पर अवंती ब्राह्मण की स्थिति और भी ऊंची बताई गई है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि ये कष्ट दिए गए थे ऐसे लोगों के द्वारा जो कोई भक्ति व्यक्ति में नहीं लगे हुए थे। इसलिए अवंती ब्राह्मण का साक्षात्कार क्या था, नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त येत यत। वो कहते हैं कि न कोई देवता, न मेरे कर्म, न ग्रह, न काल, न ये जन, कोई भी मेरे दुख का कारण नहीं है। हे भगवान, मेरे दुख का कारण स्वयं मैं और मेरा मन, ये मेरा मन ही मेरे दुख का कारण है। तो ये उसी समान है जब हम कुछ भोजन खा रहे हैं और अपने ही दांत अपनी जीभ को काट ले तो हम किसको दोष देंगे, सहन करेंगे ना। तो यहां पर अवंती ब्राह्मण कहते हैं कि कोई भी मेरे दुख का कारण नहीं है और मेरा ही मन मेरे दुख का कारण है तो उसे तो मुझे सहन करना ही चाहिए। मन परम कारण मामनंति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अवंती ब्राह्मण का जो उदाहरण दिए उद्धव जी को कि ये है वास्तविक सहनशीलता। तो रेकमेंडेड बाय कृष्णा, ये आठवां कारण। और अंत में जो प्रसिद्ध श्लोक है सहनशीलता के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा गया, तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो आज के दिन, निर्जला के दिन हमें करना क्या है, कीर्तनीय हरि, हरि का कीर्तन करना है। और हरि का कीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कौन कब कर पाएगा, कौन सी अवस्था में, जब वो अमानिना मान देना, स्वयं मान की अपेक्षा न रखते हुए दूसरे को मान देता है। कब कब वो इस अवस्था को प्राप्त करता है, जब तरोर इव सहिष्णुता, एक वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु जब वो बनता है। और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु वो कब बन पाएगा, जब तृणादपि सुनिचे। तो इसको यदि हम उल्टा समझे श्लोक को, वही सीधा है कि कीर्तनीय सदा हरि हम तब हो पाएंगे जब मान शून्यता, मान शून्यता कब आएगी, जब सहिष्णुता, सहिष्णुता कब आएगी, नम्रता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण लिया एक वृक्ष का, तरु, तरु कहते हैं एक वृक्ष को, एक वृक्ष का उदाहरण लिया। और इस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य वो पांच कारण बताते हैं कि एक वृक्ष का उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने क्यों लिया, तरोरिव सहिष्णुना। और चैतन्य महाप्रभु यहां बोल रहे हैं श्लोक में कि तृण के समान नहीं और वृक्ष के समान नहीं, तृण और वृक्ष से भी ज्यादा नम्र और सहिष्णु बनना है, ज्यादा बनना है, उनके समान नहीं। तो आज हम, क्योंकि हमारा टॉपिक आज टॉलरेंस के ऊपर है, तो सहनशीलता का उदाहरण भगवान ने वृक्ष का दिया। तो सबसे पहला कारण भगवान ने वृक्ष का उदाहरण इसलिए दिया कि वृक्ष के पांच गुण बताए हैं, पांच कारणों को देते हुए। वृक्ष का गुण यह होता है कि मिनिमम मेंटेनेंस लगता है। वृक्ष का मेंटेनेंस क्या है? मिनिमम मेंटेनेंस। क्या खाने के लिए चाहिए उसे? राजभोग? खाली जल। मिनिमम मेंटेनेंस, और वो भी चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कोई डाल दे तो ठीक है, कोई नहीं डाले तो वो किसी को कोर्ट मार्शल नहीं कर रहा है, वो खड़ा रहता है, सहन करता रहता है। बारिश के मौसम में प्रचुर मात्रा में जल मिलता है, वो अधिक जल आता है वो भी सहन करता है। गर्मी के मौसम में एक बूंद जल भी नहीं मिलता है तो भी खड़ा रहता है, सहन करता है। तो मिनिमम मेंटेनेंस, तो ये सबसे पहला गुण है वृक्ष का, जो चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के गुणों को देखते हुए उदाहरण दिए सहनशीलता का। दूसरा गुण है कि हाँ, वो कभी डिमांड नहीं करता। एक है कि मेंटेनेंस मिनिमम है, और दूसरा गुण है कि वो मिनिमम मेंटेनेंस को भी डिमांड नहीं करता। वो नेचुरली मिल जाए ठीक है, नहीं मिले वो भी ठीक है, ये उसका दूसरा गुण। तीसरा गुण है कि ये सब कुछ दुख भोगते हुए वो मनुष्यों को हर प्रकार का सुख प्रदान करता है वृक्ष। तो ये भक्ति सिद्धांत के जो शिष्य ये उदाहरण देते हैं कि कई बार जंगल में देखा जाता है कि एक लकड़हारा वो जाता है वृक्ष को काटने के लिए, तो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो सुबह चालू करता है उस वृक्ष को काटना, किससे? अपने एक्स, उस कुल्हाड़ी से काटना शुरू करता है, और काटते काटते ये थक जाता है क्योंकि वृक्ष इतना बड़ा है। तो आधा उसे काट चुका है वो, और फिर उसका लंच का टाइम होता है, उस वुड कटर का, उसका लंच का टाइम होता है। तो वो करता क्या है, उस एक्स को उसी कटे हुए वृक्ष में अटकाता है और उसी वृक्ष के नीचे बैठ के खाना खाता है, उसकी छांव में, और उसकी छांव में आराम करता है, सोता है, फिर तंदुरुस्त होकर वापस काटना शुरू करता है। तो ये वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कौन होगा इस संसार में जो कहेगा कि तुम मुझे काटने जा रहे हो, मेरे ही छांव में बैठ के तुम खाना खाओ, भोजन खाओ, विश्राम करो, और फिर और मेरे शरीर में जो काटने का साधन लाए उसको अटकाओ। जितने सारे पक्षी होते हैं अपने घोंसला कहां बनाते हैं? वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। तो ये उदाहरण वो देते हैं कि कोई है जो कहे कि मेरे शरीर के ऊपर आके रहो या मेरे घर में आके रहो। वृक्ष कहता है कि हाँ, जितने सारे पंछी हैं जो भी मेरी मेरे बलबूते पर। तो ये उदाहरण दिया गया, तीसरा कारण बताया गया वृक्ष का गुण ये है कि स्वयं वो अपने ऊपर धूप लेते हुए दूसरों को छांव देता है, ये गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में वो स्वयं बाहर सर्दी में वो ठंड कांप रहा है, लेकिन वृक्ष अपनी लकड़ी देता है मनुष्यों को कि तुम इसे जलाकर अपने आप को तापो, फूल देता है, फल देता है। तो मिनिमम मेंटेनेंस, मैक्सिमम आउटपुट, ये उसका तीसरा गुण। और चौथा गुण एक वृक्ष की सहनशीलता का ये है कि वो जितने सारे ये गिफ्ट्स दे देता है मनुष्य को, वो स्वयं का गुणगान कभी उसकी अपेक्षा नहीं करता। जैसे कि आम का वृक्ष है, तो कोई आम का गुणगान करता है, आम का जूस कितना अच्छा है, आम का फल कितना अच्छा है, उसमें से कोई फूल आए तो फूल का गुणगान होता है, लेकिन कोई वृक्ष का गुणगान नहीं करता कि वृक्ष कितना अच्छा है, हालांकि वो आम बिना वृक्ष के पैदा नहीं हो सकता। तो गुणगान वो वृक्ष ने जो अपने पदार्थ दे दिए उसका कराता है, स्वयं का गुणगान नहीं कराता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब वो हमने इसकी चर्चा की थी, वो याज्ञिक ब्राह्मण की जो पत्नियां, उनका गुणगान किया, और जो उनके पति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अर्पित नहीं किया वो यज्ञ का भोजन, तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण वृक्षों का गुणगान करते हैं और कहते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि आचरण इस वृक्षों की तरह होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो अपना सब कुछ दूसरों पर निछावर कर देते हैं, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, अपने प्राण अपने धन अपने वचन अपना सर्वस्व दूसरों को अर्पित कर देते हैं ये वृक्ष, इस प्रकार का जन्म होना चाहिए, तभी वो जन्म सफल है। एतावत जन्म साफल्य। तो ये वृक्ष का उदाहरण श्री कृष्ण भगवान ने भी द्वापर युग में लिया और चैतन्य महाप्रभु ने भी कलयुग में वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सहनशीलता सीखनी है तो तरोर इव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक वो मान शून्यता हमारे अंदर नहीं आएगी, और वो जब तक नहीं आएगी तब तक हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये सारे जो अलग अलग विधि विधान हैं हमारी साधना भक्ति के, जैसे कि आज हम जो निर्जला कर रहे हैं, इसमें हमारी चेतना यही होनी चाहिए कि भगवान ने ये सहनशीलता का गुण हमारे अंदर पैदा करने के लिए ऐसे विधि विधान दिए हैं साधना भक्ति में, और क्यों, ताकि हम जल्द से जल्द हमारा ये जो इंद्रिय भोग का कार्यक्रम है उसे खत्म करें और जल्द से जल्द शुद्ध होकर, कल हमने इसलिए वो टॉपिक भी लिया था एम्पावरमेंट थ्रू ऑस्टेरिटी, कि इस ऑस्टेरिटी के द्वारा ही हमें एम्पावरमेंट मिलता है। तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वम शुद्धियेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ऐसे दिव्य तप को जब हम करेंगे जैसे कि आज हम कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम एकत्रित आए हैं, और जो भी हम आज व्रत लिए हैं आज एकादशी का, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनके वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इस चेतना में जब हम इन व्रतों का पालन करते हैं तो शुद्धियत शुद्धिकरण हमारा होता है, सत्व गुण में स्थित होते हैं, और ब्रह्म सुख अनंतम, अनंत ऐसा ब्रह्म सुख प्राप्त होता है जिससे कि हम भगवान को और ज्यादा सुख प्रदान कर सके, और वही वास्तविक अनंत सुख है। तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि अरे ये एकादशी एक बहुत बड़ा बोझ आ गया अभी, कैसे तो ये और जो भी 12 घंटा 13 घंटा जो भी और बाकी हैं कैसे तो निभ जाए कट जाए, नहीं, वो चेतना नहीं होनी चाहिए। और ये भी चेतना नहीं होनी चाहिए कि एकादशी से पहले मैं भर लूं पूरी टांकी, एकादशी के बाद पूरी भर लूं, क्योंकि पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं, वो बंदर की एकादशी के समान। तो हमारी साधना भक्ति भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि बस आज का दिन, साल में एक एक एकादशी का ऐसा दिन है तो मैं पूरा आज के दिन, नहीं, उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि जो चेतना हम आज मेंटेन रखेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए, वैसी चेतना हम अपने जीवन भर मेंटेन रखें, और वही हमारी साधना की परिपूर्णता है। शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न? एक ऐसे ही मैं लंदन में 2 साल पहले यही दिन था पांडव निर्जला का, तो उस दिन मैंने टॉपिक लिया था कि अपने भागवत में और चैतन्य चरितामृत में कहाँ अलग अलग प्रसादम पास टाइम्स है। तो पूरे प्रवचन के बाद फिर जब मैंने एनी क्वेश्चंस, तो एक ही प्रश्न था एक डिवोटी का, उसने पूछा फास्ट ब्रेकिंग टाइम क्या है बताओ ना। उसके अलावा कोई प्रश्न? खैर वो हमको पहले ही पता रहता है, जो निर्जला करते हैं उनको फास्ट ब्रेकिंग टाइमिंग वो शुरू करने से पहले देख लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में कोई ये सब निर्जला ये सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यकता है क्योंकि हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। हमको शुद्ध करने के लिए ये इंटेंस प्रोसीजर्स दिए गए हैं। वहां पर यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई लगा हुआ है तो स्वेच्छा से वो खाए खाने पीने की सुध नहीं रखता, वो वॉलंटरली हो रहा है। लेकिन यहां पर वो वॉलंटरली नहीं हो रहा है, इसलिए हमको अलग अलग प्रयासों के द्वारा अपने आप को ये सांत्वना देनी पड़ती है कि हाँ मैं आज लगूंगा भगवान के श्रवण कीर्तन में। इसलिए आज शाम को हम विशेष लेक्चर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम विशेष भजन गाएंगे आज मदन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि क्या है शाम तक थोड़ी हालत और खस्ता हो जाएगी, तो वैसे भी लेक्चर में ज्यादा कोई आनंद तो आने वाला नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ विशेष हमारे ब्रज गीत मदन गोपाल जी के लिए और हमारे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हम करेंगे। तो आज का संडे फीस हमारा भजन संध्या पांडव निर्जल एकादशी के उपलक्ष्य में होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पांडव निर्जल एकादशी व्रत की,
जय
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।